नमो महाबदनाय कृष्ण प्रेम राजते कृष्णाय हे कृष्ण कर्णा सिंह दीन बंधो जगतपते गोपेश रामानंद और महाप्रभु जी का संवाद चल रहा था, अब अंत में लग रहे हैं। रामानंद ने पूछा आपको मैंने देखा सन्यासी होती, अब फिर मैंने पीछे देखा श्याम कृष्ण बंसी बजा रहे हैं, और थोड़ी देर बाद मैंने देखा उसके सामने एक सुनता सुने जैसी सुंदर आकृति राधा जी के रूप में सुनते हैं, और उनकी शांति से कृष्ण की शांति साबित हो गई। मैंने इस चीज को देखा, आप कौन है मैं नहीं समझता। उन्होंने कहा कृष्ण के प्रति आपका प्रेम है, जाति रही भावना जैसी भरी हो रही, आप अपनी भावना के अनुसार में हमें कृष्ण देख रहे हैं, ये मेरी कोई विशेषता नहीं, आप तो पेड़ को भी कृष्ण देख रहे हैं, जहां जहां आप देखेंगे वैसा ही कृष्ण ही देखेंगे, भक्तों का ऐसा ही भाव वहां भाव ऐसे ही देखें, भाव जब हम ना देखें देखे तार भाव जंगल पेड़ पौधे मनुष्य इत्यादि को वो नहीं देखते, वो उनके अंदर में क्या देखते हैं श्याम सुंदर की मूर्ति को देखते हैं, और श्याम सुंदर में भी समस्त जीवों को देखते, यही तो महाभागवतों का दर्शन है। आप कौन महाभागवत, महाराज जी ने कहा रामानंद जी अपनी चाकरी छोड़िए, कपटता मत मुझसे कीजिए, मुरा के नीचे ना करे बात मिली, आप हमसे कपटता मत। कपटता किसको कहते हैं? जब कार्य में और उसके उद्देश्य में पार्थक्य होता है, काम कुछ और करेगा नहीं, अब भीतर की भावना उद्देश्य अलग है तो उसको कहो। जब मन की बात और ऊपर की बात ना तब इसको काटते हैं कपट। अर्थात एक आदमी आया, हंस करके उससे मिले, आप तो देखकर के मैं बहुत प्रसन्न करता हूँ, और जब वो चला गया ये चला गया अच्छा हुआ, ये बेकार का फालतू आदमी हमारा समझ तो ये हो गई कपट। इसलिए बात और भीतर में दो बातें हों तो इसको कहते हैं कपट का। वो कह रहे हैं महाप्रभु जी को आप हमसे कपट का मत करें, आप ऊपर से सन्यासी दिख रहे हैं और भीतर से कृष्ण देख रहे हैं, तो ये आप बतलाइए आप कौन हैं, आप कौन है बतलाइए। राधिकार भाव कांति परिरंगिका निज रस आस्वादित परिया, हमें तो ऐसा लग रहा है कि आप अपने को ही आस्वादन करने के लिए राधिका जी की जो मूर्ति जो सामने खड़ी है उसी के भाव को आपने चोरी कर लिया है और उनके भाव से अपने को आस्वादन करने के लिए ये अथवा आनुषंगिक रूप में आप अपना ही प्रेम देने के लिए स्वभक्ति ये ऐसी चोरी है। कृष्ण किंतु सन्यासी के रूप में महाप्रभु जी आए थे किस लिए? कलयुग सबसे खराब युग माना जाता है साधारण से, उस समय में लोग धर्म के तीन अंग की चारों अंग एक अंश रहता है चार पैर की गलिया, तो चार पैर की गलिया में सतयुग में एक पैर द्वापर में त्रेता में एक पैर खत्म माने एक अंश और त्रेता युग में दो और कलयुग में
तीन गया,
तीन चला गया, तीन अंश चला गया एक अंश है माने क्या?
सत्य सौ दया दान
सौ सत्य शौच माने पवित्रता दया
और दान,
और दान ये धर्म के चार कार्य हैं। कलयुग में
एक दया
ये चार पाद ही तीन भाग टूट जाते हैं एक भाग रह जाता है। सत्य कुछ दया भी कुछ कुछ है, दान भी कुछ है और कुछ शौच भी पवित्रता कुछ है, किंतु एक चौथाई भाग है और बाकी सब खत्म। बड़ी भयंकर दशा होती है और ये देखने में ही जी सिहर उठता है, भविष्य काल में न जाने क्या होगा। अमीर देखकर के ऐसा आजकल के लड़के अपने माता पिता को नहीं देखते, शिष्य भी गुरु को नहीं देखते। चार तरफ में आजकल जैसी हो रही है राजनीति देखो, अर्थनीति देखो, समाज नीति देखो, कहीं कुछ नीति नहीं है। सदाचार धीरे धीरे लुप्त होता चला, परोपकार धीरे धीरे नष्ट होता है, धीरे धीरे न जाने क्या। ये बड़े बड़े जो देश के बड़े बड़े कर्णधार है उनकी ये दशा, साधारण लोगों की दशा न जाने क्या। इसलिए कलयुग सबसे भीषण है, कुछ दिनों में स्त्रियां अपने बच्चों को भी खा लेंगी, पुरुष लोग इतने भ्रष्ट हो जाएंगे जिनकी कोई सीमा नहीं रहेगी, सब का स्वभाव ही एकदम दूसरे तरह का हो जाए। किंतु चैतन्य महाप्रभु जी ने देखा, तत् कृष्ण नहीं देखा। इनका कल्याण होना चाहिए, सहस्त्र और कुछ करेंगे तो नहीं, इसलिए इसमें भी उनका भावभाव बना है, इनका कल्याण हो, इसलिए उन्होंने सहज रूप में प्रेम धर्म का प्रचार किया। अच्छा, जैसे हो वैसे रहो, समाज में राजनीति जैसा रहेगा, भगवान का नाम जो जहां पर अवस्थित भगवान नाम, और उसके साथ में महाप्रभु जी ने विशेष क्या किया, नाम प्रेम माला जाति पराग सदा, और युग में नाम संकीर्तन युग धर्म है, और आते थे भगवान का अवतार और उनकी शक्तियां आचार्य लोग ये जो नाम का प्रचार करते हैं, किंतु प्रेम देने की बस उनमें नहीं है, प्रेम नहीं दे सकते। महाप्रभु जी स्वयं भगवान कृष्ण है, इसलिए प्रेम के सूत्र में नाम को बूझ करके जीवों को सुना। ये प्रेम क्या है, पांच प्रकार के प्रेमों में से शांत दास सख्त बार सल, इनमें विशेष करके मधुर रस दिया, मधुर रस का एक भाव, उसके बहुत से भाव, एक भाव दिया सेवा करने, ये भाव को रखी जो आज तक किसी ने नहीं दिया, इसी को अनाथ चरण की रात होती है। आज तक ये नहीं दिया गया था महाप्रभु के पास में, ये प्रेम ही जीव मात्र का धर्म है। कोई भी प्राणी को ले लीजिए, बाघ सिंह को भी ले लीजिए, जंगल में रहता है, आदमी को देखता है कटू पटकर के उसे पकड़ करके खा जाता है, किंतु अपनी पत्नी को प्यार करता है कि नहीं, वो अपने बच्चों को तो करेगा। इतने कुखार डकैत हैं, कितने कितने सब डकैतों का नाम सुना आपने, किंतु ये किस लिए करते हैं, अपने कुटुंबियों के लिए, अपनी प्रेमिका के लिए, अपने पुत्रों के लिए, ये सब डकैती और ये सब काम करते हैं। प्रति किसी न किसी रूप में उनमें अवस्थित जरूर अवस्थित, चाहे मुसलमान हो, ईसाई हो, क्रिश्चियन हो, कोई भी हो, अरे यहां तक कि पेड़ पौधे भी अपने अपने संतान का प्यार करते हैं। कैसे, जो इस विषय के जानने वाले हैं ना वो समझेंगे, ये पेड़ अपने पेड़ को कैसे बड़ा करके और तब फिर अपने को छोड़ देते हैं शरीर को और उनको देख करके बड़े हैं। पेड़ों से पेड़ मिलने में उनमें एक आनंद होता है, बातचीत करते हैं, सेंसेशन इत्यादि उनमें होता है मनुष्य से। अगर गाय अपने बछड़े को जो प्यार करते हैं, मनुष्य अपने बछड़े को उतना प्यार नहीं करेंगे, इसलिए प्रेम ही जीव मात्र का धर्म। किंतु यही प्रेम जब भगवान के साथ में होगा, आत्मा का भगवान के साथ में, तो यह जीव का धर्म, ये स्वभाव से नित्य जीवों का यही नित्य सहचर स्वभाव है, भगवान की सेवा करना, भगवान के प्रति प्रेम। किंतु अभी इस समय माया की वजह से हमने अपना प्रेम संसारी किए, शरीर के प्रति हार मान इत्यादि के प्रति, मिट्टी के प्रति अभी प्रेम कर रहे हैं, उसी को नित्य मान रहे हैं। महाप्रभु जी ने बताया कृष्ण को, भगवान से प्रीति करो, उसके बिना सुख और शांति नहीं हो सकती है। कैसे होगा, नाम के माध्यम से हो, इसलिए प्रेम के सूत्र में नाम को गाथ करके जीव मात्र को देने के लिए महाप्रभु जी आए। ये बाहरी लक्षण, और आंतरिक लक्षण क्या है, उस प्रेम को, राधा जी के स्पेशल प्रेम को, कौन, राधा जी के मदनाख्य भाव, मदनाख्य महाभाव, इसकी धारणा बहुत कम लोगों की है, मदनाख्य महाभाव इसका राधा जी का भाव है, उसी को प्रेम रस लीजास्वादन करने के लिए आए, जो कृष्ण लीला में नहीं पा, ये महापुरुष के अवतार का विशेष कारण इसलिए आए। और उसका छींटा फोटा छिटाव का जैसे वर्षा होती है उसकी छिटकी इधर उधर पड़ जाती है, वो चीज दान करने के लिए,
आस्वादन करने,
आस्वादन करने के लिए तो फिर राधा माला छीटा फोटा जो है उसे जो जमीन में पड़ा फिर उसे निकला, ये हुआ वो प्रेम दान करने के लिए। रामानंद जी, रामानंद जी समझ रहे हैं और समझाई इस समय, अब तक नहीं समझ रहे थे। योग माया ने महाप्रभु जी को और राधा उनको छत करके रखा था राय रामानंद के विचार से। अब थोड़ा सा उनकी कृपा हुई, उन्होंने हंस दिया ना महाप्रभु, जब उन्होंने कहा तब हंस दिया। हंसने का तात्पर्य क्या, तात्पर्य जैसे अब राय रामानंद ने हमको समझ लिया, इसलिए जरा समझ गया तो लुका चोरी हो रही है। लुका चोरी माने क्या,
आंख मिचौनी,
आंख मिचौनी होती है, घर बच्चे खेलते हैं आंख मिचौनी ना, जब तक वो छिप लड़का छिप रहा है, जब तक कि जो देखने वाला नहीं देख, यदि देख लिया ना तो फिर वो सामने आ जाएगा। इसी तरह से जब तक लुका चोरी छिप रहे थे महाप्रभु, तब तक तो छिप रहे थे, जब हंस दिए इसका मतलब है जो वो जान गए। निज दृढ़ कार्य तुम्हार प्रेम आस्वादन अनुसंग प्रेम माए कैल त्रिभुमा। चैतन्य महाप्रभु जी समस्त विश्व को प्रेम में कर, आज भी देश के बाहर, भारतवर्ष के बाहर भी इसका प्रचार किसी न किसी रूप में हो रहा है। रामानंद जी का आप इतने दूर से आए हमारा उद्धार करने के लिए, और यहाँ आकर के आप कपट व्यवहार कर अपने को छिपा रहे हैं, अपने स्वरूप को हमारे पास में प्रकट नहीं कर रहे, ये तुम्हारा कौन सा व्यवहार है। तब यहाँ से प्रभु तारे देखा ही दर्श करो रसराज महाभाव हुई एक। तब महाप्रभु जी हंस दिए और हंस करके झट उनको अपनी जोग माया को हटा दिया, और हटाने के साथ साथ में उन्होंने स्पष्ट रूप से देखा, क्या देखा, रसराज कृष्ण अखिल रसामृत मूर्ति है, कृष्ण को उस रूप में देखा अखिल रसामृत मूर्ति के रूप में, और महाभाव मदनक्ष महाभाव के रूप में दोनों को देखते ही दो ही एक रूप, दोनों का एक साथ जपन। कृष्ण की नील कांति और राधा जी की गौर कांति दोनों मिलकर के एक हो गए। क्या पहले उन्होंने कृष्ण को देखा है, महाप्रभु जी को सन्यासी के रूप में देखा है, और कृष्ण को भी देखा है विशाखा के रूप में, जब विशाखा के रूप में कृष्ण को देखा है, आज उन कृष्ण को भी देख रहे हैं, तब तक मूर्छित तो नहीं हुए और उनको आश्चर्य नहीं हुआ। राधा और कृष्ण को पृथक रूप में देखा, राधा जी घर में खड़ी है, महाप्रभु को भी देखा, राधा जी को भी देखा, कृष्ण को भी देखा, तब तक मूर्छित नहीं हुए थे, अब इन दोनों को महाभाव और रसराज कृष्ण को दोनों का एक साथ में देखा। देखी रामानंद होइला आनंदे मूर्छि, भाव की तरंगे उनकी उठने लगी और इतनी जोर से तरंगे उठी कि अब धैर्य नहीं धारण कर सके, अब मूर्छित होकर के वहीं पर, हम लोग को तो कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा है, कुछ अनुभूति भी नहीं रही, न तो कृष्ण दिखाई पड़ते हैं, न राधा जी, न कोई भाव, अभी साधन भजन ही हमारा नहीं। महाप्रभु एक लकड़ी की मूर्ति, आंख गोल गोल बना दिया गया और हाथ भी नहीं है पूरे। पूरी में देखते हैं और कहते क्या है, साक्षात ब्रजेंद्र नंदन
प्रतिमान हो,
प्रतिमान हो, प्रतिमा आपने। यदि इसको ऐसा देखते ना यहाँ पर जैसी तो देखने मात्र से उचित होते दौड़ पड़ते एकदम, जैसे कि वहां पर हम लोग ऋषि जी को देखते हैं। सनातन गोस्वामी जी के वही मदन मोहन पर अवली में है, रूप गोस्वामी के गोविंद जी वहीं पर हैं जो उस समय थे। उस समय में राजा की स्त्री से कहा मैं तुम्हारी नखबेसर पहनना चाहती हूँ। सनातन गोस्वामी से उनके मदन मोहन जी ने कहा अरे रोटी के साथ में मुझको थोड़ा सा नमक भी तो दिया कर। हम लोगों से कभी मानते हैं न कहते हैं न हम लोग देखते हैं, ये भक्ति के तारतम्य से देखा। जब ऐसी भक्ति होगी तो ये साक्षात ठाकुर जी हैं। जगन्नाथ ने साक्षात ठाकुर दिया किंतु हम लोगों को काष्ठमय विग्रह के रूप में वो उनको हम देखते हैं, ठाकुर जी के रूप में नहीं देखते। अब इनके अंगों को स्पर्श करेंगे तो कैसा मालूम होगा,
कठोर।
एक बार मैं गया दर्शन करने के लिए तो हमारी लालसा हुई उनके चरण को छूऊंगा, दुर्बुद्धि आई तो मैंने अपने पंडा जी से कहा पंडित चलो, तो ले गए तो वो निकट में छोड़ दिया वहां तक जाने। तो हमने अपने हाथ में 10 रुपए का नोट एक ले लिया, ये चरणों को छू करके वहां रखे। चरणों को छूने के लिए गए तो देखा क्या कि हमारा हाथ पकड़ करके दोनों एकदम मोड़ करके वो नोट तो छीन लिया। इतने मोटे मोटे इतने लंबे छोड़े, मेरी तो सब धातु सब नष्ट हो। इसके बाद ठाकुर जी को लकड़ी के रूप में कठोर पाया, कहां कुमलत्व क्या, मन बहुत खराब हो। मैंने कान पकड़ा दिया अब निकट से कभी नहीं ठाकुर जी को देखने की चेष्टा। सब लोगों की ऐसी ही दशा है, जिनको प्रेम नहीं है, भक्ति नहीं है, साधन नहीं है, वैसे नेत्र नहीं है। महाप्रभु निकट तो जा ही नहीं पाते थे, बहुत दूर से एक पत्थर के स्तंभ पर हाथ रखते भाव में विभोर हो जाते और वो पत्थर गल जाते। तो जिसके ऊपर में पत्थर पर खड़े होते थे वो पत्थर में उनके दांत पड़ गए, वो भी गल जाते। यदि प्रणाम करते महाप्रभु जी तो पत्थर पिघल करके ऐसे ऐसे हो जाता, उसको प्रणाम कर रहे हैं वो सब दाग महाप्रभु जी के साथ। भक्त भी ऐसे उनके, हम लोगों को भक्ति नहीं है वैसे, हम लोगों को तो सबसमय संसारिक चिंताएं लगी रहती, गुरु के ऊपर में उतना विश्वास भी नहीं है। किसका किसका हम लोगों में से गुरु कर्ण हुआ है ये भी संदेह की बात है। अनुष्ठानिक गुरु एक होता है और एक होता है यथार्थ विद्वत रूढ़ी से गुरु। हम लोग का इनमें से कितने आदमियों का विद्वत रूढ़ी से मैंने यथार्थ रूप में गुरुत्व हुआ है, गुरु को हमने गुरु जी ने हमको मंत्र दिया है, अनुष्ठानिक रूप में दिया है वैसे दिया, अनुष्ठानिक प्रधान नहीं है। उनकी शिक्षाओं को, गुरु की शिक्षाओं को ग्रहण करके हृदय को अपने श्रद्धा से लेकर के कहां प्रेम तक पहुंचाएंगे यदि, तब इन चीजों की अनुभूति हो सकती। गुरु का दोष नहीं, यदि गुरु वैसे सदगुरु हैं तो उनसे लेने का पात्र भी तो चाहिए, और पात्र के लिए तैयार होकर क्या, गुरु ही ऐसे नहीं है तो फिर क्या होगा। दोनों का सुपात्र होना जरूरी है, जैसा गुरु होगा शिष्य भी वैसा ही होगा, साधन भजन भी वैसे ठीक रूप में होगा तब तो होगा। फिर ये दोनों चीजें नहीं मिलेंगी तो अनुष्ठानिक दीक्षा हो। हम समझेंगे हम तो शिष्य हो गए, किनके शिष्य, पूज्य पाद महाराज जी के शिष्य, फिर उनके शिष्य कहेंगे। किंतु होगा क्या, उनसे पूछा कि मंत्र तुमको क्या दिया, तो मंत्र पूरा याद में क्या कुछ दिया था, हरे कृष्ण भी शुद्ध उनको याद नहीं गए, हरे कृष्ण हरे हरे पूरा वो भी नहीं कह सकते। अच्छा तुम उनके गुरु जी का नाम क्या है, तो क्या कहेंगे? ये तो हमको किसी ने बतलाया नहीं कि उनके गुरु जी का नाम क्या। तो भक्ति में गुरु जी के गुरु जी का नाम का लेने की क्या जरूरत? अरे तुम अपने बाप का दादे का नाम याद रखते हो और ये गुरु जी का नाम, उनका स्मरण कृपा भिक्षा नहीं करेगा तो तब क्या? इसलिए जब साधन करते 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 हमारी निष्ठा, रुचि, आसक्ति और अंत में वो भाव जब यहाँ पर प्रकट होगा भाई, तब ठाकुर जी को वैसे देख सकते, गुरु जी के प्रति वैसा आदर होगा, वैष्णव के प्रति आदर होगा, भक्ति के प्रति तो वैसा। ये तो विशाखा जी है ना, इसलिए ये पात्र उसके देखने, इसलिए महाप्रभु जी को उन्होंने समझ लिया। नवदीप वाले लोग, वाराणसी के लोग महाप्रभु को पहचान सके नहीं, पर साधारण एक मनुष्य के रूप में उन लोगों ने देखा। अभी भी बड़े बड़े विद्वान लोग महाप्रभु के विचारों को तो लेते हैं प्रवचन के समय, किंतु उनको भक्त से अधिक नहीं मानते। महाप्रभु जी के और भक्त कभी नहीं थे। ये इतना सुंदर ये भाव कितना ये दे रहे हैं। अच्छा, तो राधा जी और कृष्ण के लिए मिलित तनु है, राधा जी का रसराज भाव और राधा जी का महाभाव, ये दोनों मिल करके ये चैतन्य महाभाव। आज तक ऐसा कोई दूसरा अवतार नहीं। इसको सनातन गोस्वामी जी, रूप गोस्वामी जी, साधन भट्टाचार्य, प्रकाशानंद सरस्वती और पूरी वाले साधन भट्टाचार्य, ये सब लोग बड़े बड़े विद्वान ऋषि वैष्णव ने उनको इस रूप में अनुभव किया महाप्रभु जी को। यदि कृष्ण दास कविराज की गोस्वामी की कृपा नहीं होती तो हम लोग इन चीजों को समझ नहीं सकते, कहना सुनने नहीं आता। प्रभु तारे हस्त स्पर्शी करे रचितम सन्यासी रवेश देखी विस्मित हो जाए। जैसे सनातन गोस्वामी वृद्धावस्था में गोवर्धन की परिक्रमा कर रहे थे, अत्यंत जरूर वृद्ध हो गए और कुछ खाते पीते तो थे नहीं, दुबले पतले। जब यहां से वृंदावन से जाते गोवर्धन की पूरी परिक्रमा करते और परिक्रमा करके मथुरा में दोपहर में आकर के माधुपुरी थोड़ा सा कर ले, वो भी बिना नमक की रोटी सूखी, और लेकर के चले जाते वृंदावन में और वहां जो कुछ मिलता ठाकुर जी को मनी मन में भोग समर्पण करके और उसको ग्रहण कर। और जरक वृद्ध जब हो गए तो वहीं पर गोवर्धन में चकलेश्वर महादेव के पास में रहने लगे, यहां नहीं लौटते थे और वहां रह करके उसकी परिक्रमा करते। उसमें भी जब नहीं उनसे हो सका, दोपहर में भूख में बेचारे परिक्रमा दे रहे थे, बस भूख से मूर्छित हो गए, ना किस लिए मूर्छित हो, बस मूर्छित हो गए इतना ही समय। मैं तो समझता हूं कि भूख से मूर्छित नहीं हुए हूं, जरूर कुछ कृष्ण की लीलाओं का दर्शन वहां पर किया होगा, अपनी भावना के अनुसार में उसको देख करके मूर्छित हो गए। मूर्छित हो जाने पर कृष्ण और बलदेव गोचारण कर रहे थे, बस झट आ गए और कृष्ण ने उनके सिर को उठा करके और अपनी गोदी में रख लिया और अपनी ऐसी छाया कर दी और प्रेम से उनके ऊपर में हाथ टहला और बलदेव प्रभु जी अपने पिताम्बर से, देखो कृष्ण और बलदेव स्वयं आकर के उनकी सेवा कर रहे हैं अपनी भक्त। कृष्ण के कोमल स्पर्श से उनको ज्ञान हुआ, होश आया। आज आप जो दृश्य देखा ना उनको, ये हमें ये हवा कर रहे हैं और ऐसा स्पर्श दे रहे हैं, आनंद में और मूर्छित हो गए, उस आनंद को सह न सके। फिर इनको सिलाती पैर बांधे, अपने पैर का छाप, उसमें गैया के चरण का छाप, उसमें अपनी बनमाला का छाप और बंसी का छाप देकर इसी के रोज परिक्रमा का। यहां पर वो मूर्छित हो गए, रसराज और महाभाव दोनों का मिलित रूप देख करके। हम लोग कभी कभी आसक्ति वाले पुरुष को भी जिनमें आसक्ति हो जाती है या थोड़ा सा भाव का आभास भी हो जाता है, यदि देखे ना तो उनके भाव हमारे अंदर में आ जाएंगे और हम लोग भी वैसे स्थिति हो सकते, जैसे बिंदु मंगल जी आए वृंदावन, किस कैसी भावना के साथ, रूप सनातन जी कैसी भावना लेकर, उस समय में हम लोगों का यदि सौभाग्य होता उनके दर्शन, जब रूप सनातन जी हाथ उठा करके हा राधे आप कहाँ हैं, हे विशाखा जी आप कहाँ हैं, हे वृंदावन धाम आप हमारे ऊपर में कृपा, कृष्ण मुझे कहाँ मिलेंगे, और रोते 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 एक वन से दूसरे वन में जा रहे हूं, कैसी स्थिति हो उस समय में, ये सिंह तक भी अपने घुटने टेक करके उनको प्रणाम कर रहे होंगे, जैसे राधा कुंड में देख सकते हैं, ऐसी स्थिति हो। इस तरह से वो ब्रज में इन भावों को जो प्रकाश का सौभाग्य, नहीं सौभाग्य था अभी थोड़े ही दिन हुए, ऐसे ऐसे भक्तों का प्रश्न बहुत दुर्लभ, भगवान मिल जाएंगे सहज ही, किंतु ऐसे प्रेमी भक्तों का मिलना बहुत ही कठिन है, विशेष काल के इस कली युग। इसलिए चैतन्य महाप्रभु जी ने देखा न योग न तपस्या न दान न इज्जा न अर्चन, कोई भी चीज कलयुग को उद्धार नहीं कर सकती, कलयुगी जीवों को, बस केवल महाशक्तिशाली भगवान नाम, वो भी कृष्ण नाम महाशक्तिशाली, और यह प्रेम जगत के लोगों को उद्धार। महाप्रभु जी में यह विशेषता थी, साधारण जीवों के लिए अधिक तर्क और शास्त्र युक्ति इत्यादि का अवलंबन नहीं किया, सरल सहज रूप में प्रेम को देने की उन्होंने चेष्टा की। जैसे कृष्ण ने अपना स्पर्श अधिक प्रकाश नहीं कर सके, उतना अगासुर बकासुर को सहज रूप में उनको उद्धार कर दिया, ऐसे चैतन्य महाप्रभु बिना अस्त्र शस्त्र बिना युक्ति तर्क साधारण रूप में हर जगत के जीवों के हृदय में नाम और प्रेम। इसलिए इसमें इस कलि युग में कल की अवतार नहीं होगा, इस युग में महाप्रभु का यह प्रभाव और बढ़ता जाएगा। 400 वर्ष में जब महाप्रभु आए थे, बंगाल से कीर्तन का आंदोलन आरंभ किया, धीरे 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 ये वृंदावन में और बंगाल में पिछड़ा, वो भी मायापुर के पास, धीरे धीरे रूप सनातन और इसके बाद में तीन गोस्वामी श्यामानंद जी, नरोत्तम ठाकुर और शिवा श्रीनिवास, इन लोगों ने बंगाल में और फिर उधर आसाम में, मणिपुर में, इधर उड़ीसा में प्रचार। इसके बाद उनके और सब दूसरे गोस्वामी आए भारतवर्ष में, जहां जहां गए वहां पर थोड़ा थोड़ा प्रचार, भक्ति सिद्धांत सरस्वती जी और भक्ति विनोद ठाकुर जी आए, इन्होंने व्यापक रूप में इसका प्रचार आरंभ महाप्रभु जी के बाद। पहले के लोग एरोप्लेन में नहीं चलते थे, रेलगाड़ी में नहीं चढ़ते थे,
समुद्र को नहीं पार करते,
जूता तक नहीं पड़ते थे पहनते, और समुद्र को भी पार नहीं करते। उन्होंने कहा कि प्रभु जी की सेवा के लिए सारे विज्ञान को हम भक्ति की सेवा में लगाएंगे, उनके नाम प्रचार में लाएंगे, जरूरत है समुद्र को 10 बार 20 बार 1,00,000 बार पार करें, अपने विचारों का सर्व जगह ही प्रचार करेंगे। सब इन लोगों ने आज भारतवर्ष क्या समस्त विश्व में ये लोग धीरे 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 प्रचार, महाप्रभु जी नहीं आते और अंत में ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती जी और हम लोग के गुरु पाद पद्मी इत्यादि सब नहीं आते, तो इतना व्यापक रूप में सर्वत्र प्रचार नहीं होता। इसलिए कलयुग जितना भयंकर है, ये औषधि भी महौषधि है, ये हरिनाम और कीर्तन, कुछ भी ना करें कोई भी धर्म नहीं होता, बस हरे नाम पर किसी और भगवान की धीरे धीरे चरित्र बदल जाएगा। महाप्रभु जी ने उनको स्पर्श किया, तीन प्रकार की दया भगवान करते हैं, अपना तत्व ज्ञान जीवों में देते हैं, एक तो दृष्टि शक्ति से, जिसको तरफ में देखा ना बस शक्ति का संचार कर दिया, हृदय में शक्ति ऊपर से मालूम नहीं हो, और दूसरा बातचीत, बातचीत मैंने कहा, उनको उपदेश किया और उनको तत्व ज्ञान दे दिया। और तीसरा है
आलोक, जो
आलोक
बातचीत हार्दिक आलोक,
उनको एकदम दर्शन दे करके ही स्पर्श कर दिया। यहाँ पर महाप्रभु जी उनकी मूर्छा अत्यंत घनी हुई थी, अत्यंत घनी, इसलिए अपने हाथों का आपको मल स्पर्श दे करके और उनकी मूर्छा को दी। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने वर्णन किया है, महाप्रभु जी वदान्य है। वदान्य माने क्या? महावदान्य, इसलिए महावदान्य है ये। और अवतार ने जो कुछ दिया, विशेष करके शत्रुओं को मारा, अगासुर बकासुर इत्यादि को, किंतु वो लोग जीवित काल में ये न समझ सके जे इनकी कृपा हमारे ऊपर में हुई है, कोई नहीं समझा। किंतु इस अवतार में जिस पर महाप्रभु नित्यानंद जी ने कृपा की ना, किसी को मारा नहीं, इसलिए पीछे उन्होंने इस चीज को रियलाइज किया, अनुभव किया, जगाई मधाई, उसके चित्त को एकदम सूखी था, मारने की जरूरत नहीं पड़ी। संशोधन कर जो जो सामने आए सबको महाप्रेम ज्ञान कही, इसलिए पीछे से भी वो लोग समझ सके कि महाप्रेम की हमारे ऊपर नहीं था। तो पहले कृष्ण दर्शन देते हैं, या दर्शन के पहले वो अपने वंशित ध्वनि सुनाए, सुस्वा सुनते ही आदमी जीव मूर्छित हो जाएगा। फिर इसके बाद में उसको उठाएंगे,
सुकुमार जो
अपने सुकुमार हाथों से स्पर्श करके उठा देंगे, फिर उनको रूप को देखे ही मूर्छित हो जाएगा। फिर उसको
सौसर्ज
अपने बुला करके, अरे प्रेमी भक्तों उठो, मैं तुम्हें स्पर्श कर रहा हूं, उससे बातचीत करेंगे, तुम क्यों मूर्छित हो गया हमें, पर सुनते ही वो। फिर इसी तरह से कितनी बार
सुगंध,
अपने सुगंध को दे करके उसको फिर मूर्छित से फिर उठा दे। महाप्रभु जी कहते हैं एक साथ में सब चीज, अपना रूप, अपना गुण, अपना सुस्वर, बंसी, ये सब दिखलाएंगे और उनको बेहोश नहीं होने देंगे। ऐसे ये महाप्रभु जी की, इसलिए महावदान। और कृष्ण प्रेम, कृष्ण के अतिरिक्त और कोई नहीं दान कर सकता, कृष्ण ही अपने प्रेम को दान करने वाले, वो भी महाप्रभु के रूप में, इसलिए चैतन्य महाप्रभु महावदान है। महाप्रभु जी ने उनको छू दिया और स्पर्श करने के साथ ही में जो कोमल और सुगंधित उनका हाथ लगा, बस झट उठ करके बैठ गए। सन्यासी वेश देखे विस्मित है, अब वो जो दृश्य था वो तो अंतर्हित हो गया, बोझल हो गया। उन्होंने देखा था पहले, अभी 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 हर्षराज और महाभाव दोनों को एक जगह देखा था, अर्थात सुंदर कृष्ण का रूप, किशोर रूप, बंसी बजाते हुए, और उधर राधिका जी को देखा। अब दोनों को फिर मेल एक साथ संयुक्त होकर के देखा, उसी समय में मूर्छित हो गए, पत्थर का स्पर्श पा करके फिर देखते हैं क्या सन्यासी। आलिंगन कर प्रभु कैलय आस्वादन, तुम बिना ए रूप ना देखे अन्न जान, मैं तुम्हारे अंदर में ऐसे भाव है, आज तक इस रूप को किसी दूसरे ने नहीं देखा, महाप्रभु के सन्यासी रूप को भी देखा है, और कृष्ण का भी दर्शन कोई कर सकता है या किया हो, किंतु दोनों का मिला हुआ रूप आज तक किसी ने नहीं देखा, आज तक तुमने ही सबसे पहले देखा। मोरत कलिया रस तुम्हार गोचरे, अतएव रूप दिखाई न तुम्हारे, गौरंग नहीं मोर राधांग स्पर्शने न स्पर्शन, भूपेंद्र सूत बिना तिहु ना स्पर्शे अन्य जन। कहते हैं कि मेरा यह जो लीला तत्व है, तुम्हारा तृप्त कोई ऐसा पात्र नहीं जो कि इस चीज को समझे और दर्शन करे, मैंने तुमको दिखलाया। ये क्या दिखलाया? गौ अंग नहीं हो, मेरा जो अंग है ये गौ वर्ण नहीं है, सन्यासी के रूप में ये तुम गौ देख, ये मेरी प्रभा नहीं, अंग ज्योति नहीं है, बल्कि मोर राधा अंग स्पर्शन गोपेंद्र ये राधा जी के अंग के स्पर्श करने से ये मेरी कृष्ण की ये अंग कांति और भावना हुई, राधा जी के स्पर्श से। राधा जी के अंग को कोई दूसरा नहीं स्पर्श कर सकता, कोई नहीं कर सकता। उन योग माया उनकी सब प्रकार से रक्षा करती है। राधा जी मेघ को जब देखती हैं वृंदावन के लीला में, तो मेघ को भी श्याम सुंदर समझकर और उनसे मिलने की आकांक्षा करती हैं। कभी कभी तमाल वृक्ष को देखा और तमाल वृक्ष को कृष्ण समझकर और झट उनका आलिंगन करती हैं, श्याम सुंदर मिल गए, उनसे बातचीत करेगी। कभी कभी अपने ये केश जो काले हैं इनको देख करके भी कृष्ण की स्मृति उनकी जरूरती है। किंतु उद्धव जी ब्रज में आए, कृष्ण जैसे देखने में, कृष्ण की जितनी लंबाई, जैसे अंग के अंग सुंदर हैं, उद्धव जी की कृष्ण के ही समान है। कृष्ण ने अपने वस्त्रों को पहना दिए हैं, श्याम रूप भी है और श्याम के समस्त अलंकार भी धारण कर रखे। अपना पीतांबर उनको पहना दिया, प्रसाद अपनी प्रसादी माला उनको दे दी, अपने कपड़े दे दिए, सब कुछ दे दिया और अपना रथ भी दे दिया। उस पर बैठा करके वृंदावन में भेजा। उद्धव जी ब्रज में गए, गोपियों ने उनको देखा, देखा जी श्याम सुंदर ही आ रहे हैं, श्याम सुंदर जैसे श्याम
श्याम बटे किंतु
श्याम बटे किंतु श्याम न, बंगला में है ये, श्याम बटे किंतु श्याम न, श्याम है किंतु श्याम नहीं है। रंग से श्याम, देखने में श्याम जैसा है किंतु श्याम अर्थात कृष्ण श्याम ये नहीं। देख करके भाव में मग्न हो रही हैं और कृष्ण के दूत रूप में एक भावने से बातचीत करने लग गए और उद्धव जी देख करके दंग रह गए, होश में नहीं रहे। उनको आलिंगन नहीं किया, उनसे छेड़ा भी नहीं, पूछा कि नहीं उद्धव तुम कौन है, कुछ भी पूछा ही नहीं। बल्कि दूसरी गोपियां ने कुछ पूछा, गोपी ने कहा तुम मथुरा से आए हो, उद्धव जी ने कैसे समझ लिया कि मैं मथुरा से आया, तुम जरूर मथुरा से। अच्छा तुम श्याम सुंदर के निकट से आया है, तभी ये भी आपको कैसे मालूम हो? अरे हमको मालूम हो गया। कैसे मालूम हो गया? मालूम हुआ इसलिए, आंखों से हम नहीं देखा देख रहे हैं, हमारी नाके कभी भूल नहीं कर सकते। क्या नहीं भूल कर सकते? श्याम सुंदर का गंध तुम्हारे अंगों में, ये क्यों? उनके वस्त्रों से और उनकी मालिका से श्याम सुंदर का अंगों का गंध उसने लग गया और तुम उसको पहन करके आया है। तो वो श्याम सुंदर तो दूसरे को वो फूलमाला और अपने वस्त्र देंगे नहीं, किसको देंगे? जो अपना घनिष्ठ मित्र बंधु होगा, तुम जरूर उसी श्याम के निकट से। और एक बात किसे कह रही है? वो फौरन से कह रही है, उद्धव को देखा, दूसरी गोपियों ने उत्प्रेक्षा करके उनसे ये परी उद्धव समझ रहे हैं, राजे बड़े अच्छे रूप में आए, बड़े सोने जैसे कपड़े कपड़े धारण करके आया, कहां ब्रज में आया ना, तो कृष्ण की मैया को दिखलाने के लिए आया, ये हमारा लड़का अब मथुरा का द्वारका का राजा होगा, ये चीज को दिखलाने के लिए तू आया, ये उनका दूत ही इतना सोने के रथ में चढ़ करके आ सकता है और इतना वैभव कैसा? तो कृष्ण को इसलिए हमारा बेटा कहीं आता जाता नहीं है मैया के बाप में, जो अभी गैया चराते हैं जिनका नाम गुरु है, उनके पास में हमारा बेटा मान वो कैसे आएगा? बोला जाता है, जैसे कहानी कहता हूं मैं, कहानी नहीं सचमुच की बात, यही पर मथुरा में कोई कोई जज थे, उनका बाप था गांव का गमारू आदमी, चमरुआ जूता पहन कर और घुटने के ऊपर तक कपड़े पहन करके एक लठिया लेकर के बेचारा अपने बेटे के पास में मथुरा में आए, पता लगा कि घर में वो नहीं है, वो तो वहां पर बैठा है कचहरी में है। तो पूछते पूछते अपने बेटे का परिचय देते हुए वो वहां पर गए। तो वहां पर एकदम कोर्ट में लोगों ने उसको मना किया, मत जा। तभी वो माना नहीं, देखा जैसे बेटा तो वहां पर बैठा हुआ है, सोचा कि बेटे को जी इतना बड़ा अफसर हो गया, प्यार कर लिया। तो वो जब गया तो वो बड़े बड़े अफसरों के साथ में बातचीत कर रहे थे। ये निर्धारण वहां पर पहुंच गया और बेटा बेटा कहने लगा। तो लोगों ने कहा कि भाई ये चमड़ुआ जूता पहना हुआ, व्यवहार फटी हुई और ये ऐसे कपड़े पहन रहे, ये कौन यहाँ आ गया? तो उनसे पूछा जी ये कौन है? तो ये दिस इज माई सार्वजन, मेरा नौकर है। तो वो समझ गया, समझ गया। उसने कहा कि नहीं मैं इसका इसका नौकर नहीं, इसकी मैया का नौकर हूँ। और ये कह करके तो ऐसे ही लोगों को लज्जा आती है ना। तो वैसे ही गोपियां ऐसे समझ रही कृष्ण को, ऐसे अपना परिचय देने में इनको लज्जा होती है, इसलिए नहीं आकर के अपने दूध को इस रूप में भेज। उद्धव जी कहते हैं कि पृथ्वी यदि फट जाती ना तो मैं उसके अंदर नहीं समा जाता। ये लज्जा से मुख दिखलाने लायक मैं नहीं रहा। गोपियां ऐसे पैसे उनको बना रही। तो यहां पर वो जो कृष्ण का भाव, वो कृष्ण साक्षात यहाँ पर राधा जी के साथ में यहाँ पर प्रकट। जब कृष्ण की ऐसी ही लीला में विशाखा जी को कोई आश्चर्य नहीं, किंतु आश्चर्य इस रूप में, इसलिए महाप्रभु जी का भाव और भी बहुत ऊंचा है। इसलिए महाप्रभु को सोचने के लिए, समझने के लिए ऐसी आंखें चाहिए, ऐसा भाव चाहिए भाई, तब हम लोग समझ सकते हैं। अन्यथा महाप्रभु को हम लोग नहीं समझ, उनकी लीलाओं को भी नहीं समझ सकते। पहले तो ये समझे जो निष्ठा किसको कहते हैं, रुचि किसको कहते हैं, ये पहले समझें। तब महाप्रभु जी को महाभाव की अवस्था में यदि कोई जाए किसी जन्म में, जन्म जन्मांतरों में, तब कुछ ये साधारण बात। आप लोगों का परम सौभाग्य है, प्रतिदिन किसी न किसी रूप में महाप्रभु जी की लीलाओं का, राधा कृष्ण की ऐसी प्रेम में लीलाओं का ये बहुत सौभाग्य की बात है। महाप्रभु जी ने उनको चेतन कराया और बोले तुम्हारे बिना ऐसा हमारा रूप आज तक किसी ने भी न देखा न उपलब्धि किया। आप लोग श्रवण के द्वारा ही जितना सुन रहे हैं ये हम लोगों का आप लोगों का परम सौभाग्य। गौरंग नहीं वो हमारा अंग गौर न है, गौरंग नहीं है, ये तो राधिका जी का है। वो तो मेरे ऊपर में प्रतिफलित, उन्होंने चार हमारे समस्त अंगों को अपने अंगों से ढक करके भाव को भी अपना हमारे अंदर में संक्रमित कर उनका। इस समय में मैं राधा जी का भाव, उनकी अंग कांति और एकदम तन्मय होकर के वही राधा जी के रूप में ही हूं। तबे तार भावी करी आत्ममन, तबे निज माधुर्य करी आस्वादन। मैं तो इसीलिए राधा जी का भाव उनकी अंग कांति के लोग करके कृष्ण के इन सुंदर भाव को माधुर्य को मैं आस्वादन करता हूं। तुम्हार ठाई अमार किछु गुप्त नहीं कर्म, तुम्हारे यहां हमारा मैंने चोरी करने की चेष्टा की, चलाकी करने की चेष्टा की, किंतु भक्तों के से वो छिप गई। भगवान बड़े चतुर हैं ये बात ठीक है, बहुत चतुर बुद्धिमान है, किंतु जसोदा के सामने उनकी चतुराली नहीं चलेगी, सखियों के सामने, सखाओं के सामने उनकी चतुराली नहीं चले, विशेष करके सखियों के सामने। ब्रह्मा जी को तो मोहित कर देंगे,
शंकर को मोहित कर देंगे,
देवताओं को भी मोहित कर देंगे और भक्तों को भी मोहित कर देंगे, किंतु गोपियों को मोहित करना खुद ये उनके लिए संभव, वही पर वो हार जाए,
खुद मोहित हो जाता है, मोहित क्या।
इसलिए अब हमारे छिपाने की तुम्हारे पास में कोई बात, लुकाई ले प्रेम बोले जान सब का, यदि छिपाऊं भी तो आप प्रेम के बल पर उन्हें जान सकते और जान लेते हैं। इसलिए मैं आपके निकट छिप नहीं सका, छिपाने की चेष्टा है। इसलिए भक्त लोग जो होते हैं, यदि साधारण एक भक्त भीष्म के हैं, यदि वो अपनी बात को छोड़ करके उनकी बात की रक्षा करते हैं, तो ऐसे प्रेमी भक्तों की बात नहीं। इसलिए वो प्रेम के द्वारा वशीभूत हो सकते हैं। दुख तेरा प्रिय ना कही प्रकाश, हमारे बातों में चेष्टा लुके उपाय, हमारे इस भाव को तुम कहीं भी अलग से प्रकट मत करना, अपने मन में दुख कर रखना। जब तक मैं प्रकट रहूं तभी मत कहना, नहीं तो लोग मुझे पागल कहेंगे और तुम्हें भी पागल कहेंगे। इस देश को प्रकाश पड़ता जो ज्ञाधिकारी भजन के प्रभाव से पीछे इन चीजों को समझेगा। आमी एक बात तुम्हें द्वितीय बात, मैं एक पागल और तुम एक पागल और मिल गए। हमारे अद्वैताचार्य जी ने कहा एक पागल बड़ा पागल है महाप्रभु और दूसरा पागल मिल गया नित्यानंद, और दो पागल जगाई मधाई मिल करके ये चार हो गए, और ये चार समस्त मत यहाँ के नवदीप निवासियों को ये चारों सबको पागल बनाएंगे, और नवदीप वासी और सब ये एक पागलों का समूह मिल करके जगत को पागल बनाए। इसलिए तुम सावधान रहो, हरदास ठाकुर को मनाता हो। तो यही प्रकार है, एक मैं पागल, द्वितीय तुम पागल, अतः तुम्हारा अमाय यही सम, तुम और मैं पागल, बस दोनों ही अपने अपने भाव को रखें, ये तीसरा न समझे। ये विशेष करके हम लोग जो यारूप गोस्वामी का भक्ति और स्वामी सिंधु उनकी उज्जवल लिंगन और उनके ग्रंथों को विशेष करके गोविंद लीलामृत आदि यहाँ यदि पाठ करें ना तो सब मथुरापुरी के लोग मारने के लिए आए। पहले ये सब भ्रष्ट कर रहे हैं समाज को, जाति नहीं समझ सकेंगे, इसलिए उन चीजों को छिपा करके साधारण रूप में वैधिक भक्ति का प्रचार करो, नाम करो, कीर्तन करो, ये करो, और ये जो अंतरंगा जो रागंगा भक्ति इसको सबके सामने नहीं कहा, क्योंकि समझ नहीं सकेंगे, धारणा नहीं कर सकेंगे, उनके लिए लोक समाज करो। साधारण ये चीजें हैं, बस वैदिक भक्ति का प्रचार प्रसार, बस यही सदाचार ठीक रखो, भगवान का नाम करो, तत्वतः सभी हम कृष्ण के दास हैं, बस यही कर। राधा कृष्ण की नित्य लीलाओं का भी नैतत् समा करे थे मान सकते, यह श्रीमद भागवत में भी मना किया गया। इसलिए हम लोग उनके जो उपदेश हैं उनके उपदेश पहले साधारण उपदेशों से आरंभ करें, और फिर यदि हमारा परम सौभाग्य होगा तो रसिक वैष्णव के संग में इन चीजों की उपलब्धि कर सकेंगे, तब तो हम लोग इन चीजों को जान। आज यही तक रहे, अभी दूसरी जगह जाएं, कल हमारे चैतन्य महाप्रभु जी का और राधा कृष्ण की मान जन्म परसों है, लोगों को जनाने के लिए हम लोग कल ही नगर संकीर्तन करेंगे, 4 बजे से आरंभ करेंगे। दिन आजकल वर्षा हो रही है, पहले इतनी वर्षा तो कभी और भी दिन देखा 10-15 वर्षों से 20 वर्षों से नहीं देखा, इस वर्ष विशेष वर्षा हो, और शहर में गंदगी का साम्राज्य फैला है।
कल सफाई भी होगा,
आज भगवान की कृपा से हम लोगों ने सुना ये नगर के प्रतिष्ठित व्यक्ति लोग साफ कुछ रास्ता कर रहे हैं। मैंने सोचा ये भगवान की अशेष कृपा है, कल परसों उनका जन्म होना है, कल हम लोग ठाकुर जी को लेकर के चलेंगे, और उसमें सड़े गंदे यही ये सब में कीचड़ और बीचड़ ये सब में ठाकुर को ले जाएंगे, इसी तरह से साफ। फिर हमने सुना जो कुछ लोग करें, मेरे अंदर में तब कोई 1 मिनट में अंदर में हम लोगों ने विचार किया, और मृदंग खोल लेकर के करताल कंसर और सब मठ के ब्रह्मचारी और कुछ जो लोग यहाँ पर साथ थे 20-25 आदमी और आसपास के कुछ लोग मिलकर के कीर्तन करते हुए चल दिया, और छत्ता कुछ लोग कर रहे थे, और हम लोगों को देख करके वो भी हर करके नाचने लगे, और
हम लोग हरि हरि
ये भगवान का कार्य है समझ करके बस उसमें लग गए। सब लोग जितने थे और बड़े उत्साह से लग सके, क्षण भर में 8 घंटे में द्वारकाधीश का पार कर सके।
और कल 9 बजे इधर होगा।
कल हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ सब कुछ घर में हुआ, किंतु किसी की नजर इस रास्ते पर नहीं पड़ी।